नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप दादू याजू से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। आध्यात्मिक रूप से सबल होना ही वास्तविक सशक्तिकरण, राष्ट्रपति। वैश्विक स्तर पर अनुसंधान केंद्र के रूप में उभर रहा भारत, उपराष्ट्रपति। भीषण चक्रवाती तूफान की तीव्रता में आ रही कमी, एनडीआरएफ। देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू की आज 60वीं पुण्यतिथि। पीएम मोदी ने किया स्मरण। एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर दीपा ने रचा इतिहास। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आध्यात्मिक मूल्यों को विकसित करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा है कि आध्यात्मिक रूप से सवाल होना ही वास्तविक सशक्तिकरण है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि आध्यात्मिक मूल्यों सभी धर्मों के लोगों को एकजुट करते हैं। राष्ट्रपति नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रह्म कुमारी संगठन द्वारा आयोजित एक समारोह में स्वच्छ और स्वास्थ्य समाज के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण के राष्ट्रीय समारोह को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति मुर्मू ने युवाओं में आध्यात्मिक मूल्य जगाने की दिशा में ब्रह्म कुमारी परिवार की सराहना की। उन्होंने कहा कि महिलाओं के नेतृत्व वाला ब्रह्म कुमारी संगठन दुनिया के सबसे प्रमुख आध्यात्मिक संगठनों में शामिल है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि भारत के पारंपरिक ज्ञान, विचार, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक जीवन शैली ने विश्व का ध्यान हमेशा आकर्षित किया है। उपराष्ट्रपति आज कर्नाटक के बेलगावी में राष्ट्रीय पारंपरिक चिकित्सा संस्थान में आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पारंपरिक औषधियां, पद्धतियों और जानकारियों पर शोध किए जाने की आवश्यकता बताते हुए कहा कि इससे समस्त समाज को लाभ मिलेगा। उन्होंने अनुसंधान और विकास में निवेश के महत्व पर भी बल दिया और कहा कि देश वैश्विक स्तर पर अनुसंधान केंद्र के रूप में उभरने के लिए तैयार है। उपराष्ट्रपति ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान करते हुए कहा कि योग, सिद्धि तथा अन्य पारंपरिक ज्ञान से आधुनिक जीवन शैली के समक्ष आ रही चुनौतियों का समाधान तलाशने में सहायता मिली है। उन्होंने कहा कि देश की प्रगति और समृद्धि के लिए प्रत्येक व्यक्ति और समाज में उत्तम स्वास्थ्य के लक्षण होने आवश्यक है। हमारी अगली पीढ़ी को पारंपरिक ज्ञान से लाभ उठाकर इसे अपने दैनिक जीवन में शामिल करना होगा। इस अवसर पर कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत भी उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल में दक्षिण और उत्तर 24 परगना के तटीय क्षेत्र तथा सुंदरबन क्षेत्र में बारिश हो रही है और हवाएं भी 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। कोलकाता, हावड़ा, हुगली, 24 परगना नदियों में भी बारिश हो रही है और कम गति से हवाएं चल रही है। 80 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला रेणुका मंडल की दक्षिण 24 परगना जिले के मसूनी द्वीप में एक कच्चे घर पर कल पेड़ गिरने से मृत्यु हो गई। सुंदरबन के इलाकों में जलभराव हो गया है और पानी बंगाल की खाड़ी में जा रहा है। दूसरी ओर दक्षिण खंड और बारासत हमनाबाद लाइन पर सियालदह की रेल सेवाएं बहाल कर दी गई है। वहीं हावड़ा संभाग की हावड़ा अमता रेल लाइन की सेवाएं रद्द कर दी गई है। दक्षिणेश्वर और गिरीश पार्क तथा महानायक उत्तम कुमार और कवि सुभाष के बीच छोटी मेट्रो रेल सेवा संचालित की जा रही है। कोलकाता और दक्षिण तथा उत्तरी 24 परगना जिलों में कई पेड़ उखड़ गए हैं। लगातार बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव हो गया है। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में कोलकाता, बशीरहाट और डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र के लिए होने वाला चुनाव प्रचार भी प्रभावित हुआ है। चक्रवात रेमल पर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के डीआईजी मोहसिन शहादी ने कहा है कि मौसम विभाग से मिली मौजूदा जानकारी के अनुसार भीषण चक्रवाती तूफान की तीव्रता अब कम हो गई है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हवा की गति जो पहले लगभग 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा थी, वो घटकर अब 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है। श्री शाहिदी ने कहा कि ये बड़ी राहत है और उम्मीद है कि आज शाम तक स्थिति और बेहतर हो जाएगी। उन्होंने बताया कि कोलकाता में दीवार गिरने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। उन्होंने आगे कहा कि बहाली का काम जारी है और एनडीआरएफ की 14 टीमें और एसडीआरएफ की 6 टीमें पश्चिम बंगाल के तूफानग्रस्त इलाकों में तैनात है। भीषण चक्रवाती तूफान रेमल धीरे धीरे उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है। आज सुबह ये चक्रवाती तूफान में बदल गया और बांग्लादेश कि मंगला से करीब 24 किलोमीटर दूर केंद्रित था। इसका केंद्र कोलकाता से 90 किलोमीटर पूर्व दिशा में स्थित है तथा अब यह असम और मेघालय की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग के महानिदेशक डॉ मृत्युंजय महापात्र ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि पश्चिम बंगाल में मौसम अब सामान्य होता जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य के पूर्वी जिलों में कहीं तेज और कहीं बहुत तेज वर्षा हो सकती है। आज अत्यधिक वर्षा का कोई पूर्वानुमान नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को आज उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने श्री नेहरू का स्मरण किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी सहित कई अन्य लोगों ने आज श्री नेहरू की 60वीं पुण्यतिथि पर दिल्ली के शांतिवन स्थित उनके स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री खड़गे ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री नेहरू के अतुलनीय योगदान के बिना देश का इतिहास अधूरा है। उन्होंने कहा कि श्री नेहरू लोकतंत्र के समर्पित संरक्षक थे और उन्होंने देश को वैज्ञानिक, आर्थिक, औद्योगिक और अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ाया। लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण का प्रचार जोरों पर है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, महागठबंधन तथा अन्य दलों के नेता लगातार रैलियां कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, सालेमपुर और चंदौली लोकसभा क्षेत्र में आज शाम चुनाव प्रचार करेंगे। भाजपा के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा वाराणसी में नागरिकों, बुनकरों, कलाकारों और मतदाताओं से विभिन्न कार्यक्रमों में संवाद करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव पटना के मनेर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। यहां वो पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा करेंगे। जनता दल यूनाइटेड की अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नालंदा संसदीय क्षेत्र में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश के चंबा और शाहपुर में जनसभा को संबोधित करेंगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पटना साहिब के खुसरूपुर और पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के मनेर में जनसभा करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जहानाबाद, पाटलिपुत्र और आरा संसदीय क्षेत्र में राष्ट्रीय जनता दल और सीपीआईएमएल उम्मीदवारों के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सर्वोच्च न्यायालय में मेडिकल जांच के लिए अपनी अंतरिम जमानत को 7 दिन और बढ़ाने के लिए याचिका दायर की है। न्यायालय ने अबकारी नीति से जुड़े कथित धन शोधन मामले में श्री केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है और उन्हें 2 जून को आत्मसमर्पण करना है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि श्री केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से उनकी सेहत काफी खराब हुई है। इस बीच प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले हफ्ते दिल्ली की एक अदालत में श्री केजरीवाल की अंतरिम जमानत की समाप्ति पर उनकी न्यायिक हिरासत को 14 दिन बढ़ाने के लिए याचिका दाखिल की है। राजस्थान के लोगों को भीषण गर्मी और गर्म हवाओं से निजात नहीं मिल रही। कई जगहों पर तापमान के नए रिकॉर्ड बनाए हैं। पिछले 24 घंटों में फलोदी में अधिकतम तापमान 49.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा 10 शहरों में पारा 47 डिग्री से ऊपर मापा गया है। गुजरात सरकार ने राजकोट में टीआरपी गेम जोन में आग लगने के मामले में 2 पुलिस अधिकारियों समेत 7 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने काम में कथित लापरवाही के साथ अधिकारियों को तत्काल निलंबित करने का आदेश दिया है। गुजरात सरकार ने इस घटना का स्वतः संज्ञान लिया है। गुजरात उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति वीरेन वैष्णव और न्यायमूर्ति देवन देसाई की विशेष पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शनिवार को हुए इस दुर्घटना में कम से कम 30 लोगों की मृत्यु की आशंका है। घटना की जांच के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सुभाष त्रिवेदी की अध्यक्षता में 5 संसदीय विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया गया है। दीपा कर्माकर ने कल उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। 30 वर्षीय दीपा ने 13.566 का औसत स्कोर प्राप्त कर ये जीत दर्ज की है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।